हंसवाहिनी वीणा वादिनी विद्या की देवी सरस्वती आपकी जीवा पर सदा विराजमान है। आप हर की पौड़ी की गंगा है। ऐसे वरदानों से जिन्हें स्वयं परमात्मा ने सजाया है, ऐसे ईश्वरीय ज्ञान योग धारणा की दिव्य मूरत हम सब के बीच में विराजमान आदरणीय राजयोगिनी शीलु दीदी जी, हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं और आपका ये सौभाग्य रहा कि मुंबई में ही रहते स्वयं साकार बाबा की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ। फिर तो आप लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, आप अपनी पढ़ाई के फाइनल ईयर में थे, बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे थे मुंबई यूनिवर्सिटी से। वो ग्रेजुएशन की एग्जाम्स देकर आप सीधा मधुबन पहुंचे और यहाँ पर बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो प्रथम टीचर्स ट्रेनिंग रखी गई थी उसमें भाग लिया और राजयोग का टीचर बनकर तैयार हुए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बाबा ने, दादियों ने आपको विभिन्न स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश की विविध धरनियों पर जाकर आपने बाबा के छुपे हुए लालों को निकाला, सेवा केंद्र स्थापित करने के निमित्त बने। और फिर 76 में मधुबन में आने पर आपके लिए एक गोल्डन अवसर, सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा था और वो सुनहरा अवसर दादी जी ने आपके सामने रखा, मधुबन निवासी बनने के गिफ्ट, जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। तो 76 से लेकर आप इस हेडक्वार्टर की धरनी पर रहकर मम्मा बाबा दादियों सबकी जिन्होंने पालना ली है, उन सब की पालना लेकर आज देश विदेश में आप खूब सेवाएं कर रहे हैं। 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके आपने बाबा का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, बाबा के लाल निकाले हैं। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। इस मधुबन पांडव भवन में साल भर जो ज्ञान योग के प्रोग्राम चलते हैं, बाबा की सीजन में विदेशी भाई बहनों के ज्ञान योग के प्रोग्राम और उसके बाद आप भाई बहनों की भट्टियों के प्रोग्राम, तो सारा ही साल जो ज्ञान योग के प्रोग्राम चलते हैं उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं और आप बाबा के इंटरनेशनल इंटरप्रेटर हैं। अंग्रेजी भाषा बाबा की मुरलियों को अंग्रेजी करना ताकि बाबा के देश विदेश के हर बच्चा, चाहे उसकी भाषा कोई भी हो, लेकिन बाबा की मुरली उस तक पहुंचे। आज जो हम मीडिया की सेवा 24 घंटा देख रहे हैं, वो भी एक चैनल नहीं, दो दो तीन तीन चैनल, खास ब्रह्मा कुमारी की, लेकिन उसकी शुरुआत अगर किसी ने की है, कोई पहली ब्रह्मा कुमारी की शुरुआत में है, तो वो कौन सा नाम है पहली ब्रह्मा कुमारी का? शीलु दीदी। और आज हम देखते हैं कितना उसका विस्तार हुआ है। तो बहुत सारी सेवाओं में आप लगे हुए हैं, लेकिन विशेष विशेष जो वर्तमान में आपका पार्ट है वो ये कि जो पालना मम्मा से, बाबा से, दादियों से ली है और वो पालना लेके जीवन को बाबा की शिक्षाओं के अनुसार गढ़ा है, अब वही पालना आने वाले हर भाई बहन को देना, ताकि किसी की भी कमी किसी बच्चे को महसूस न हो, वो हम वर्तमान में आपसे देखते हैं। इतना ही नहीं, आपके जीवन में सदा ही नम्रता, मधुरता और सहनशीलता की त्रिवेणी सरिता सदा ही बहती रहती है। तो ऐसी गुणवान, ज्ञानवान, धारणा मूरत हमारे दीदी हम सबके बीच में आज अपने अनुभव से हम सबको भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे। यूं तो लक्ष्य बहुत ऊंचा है, महसूसता द्वारा संपूर्णता कोई एक दिन में हासिल होने वाला लक्ष्य नहीं है, लेकिन ऊंचे ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाने होते हैं। तो आज फॉलो फादर करते हुए कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे, दीदी उसको स्पष्ट करेंगे। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
आप ये सुनाओ अपना परिचय।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में घर बैठे यह ज्ञान मिला और उसके बाद 1998 से समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। आरंभ के 5 वर्ष ज्ञानसरोवर अकेडमी में स्पार्क ऑफिस में सेवा करने का बाबा ने अवसर दिया कि जिन 5 वर्षों में बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने के, जिस पुस्तक का नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा, जो इतनी मोटी पुस्तक है, बाबा के महावाक्यों का संकलन है। और उसके बाद चूंकि हम गोंदिया से निकले हैं और गोंदिया नागपुर सब जोन के अंतर्गत आता है, तो नागपुर में हमें अवसर दिया दीदी ने, तो नागपुर के सेवा केंद्र पर रहे। और उसके बाद चूंकि हम स्पार्क से जुड़े थे तो रमेश भाई और उषा बहन से जुड़े थे, उन्होंने गांधीवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया, तो सेवा केंद्रों का अनुभव किया। और चूंकि हमारे समर्पित जीवन की यात्रा तो हेडक्वार्टर से शुरू हुई थी, बाबा ने पुनः हेडक्वार्टर में चांस दिया 2009 और निमित्त बनाया आदरणीय शीलू दीदी जी को। तो इसलिए वर्तमान में हम यहाँ रहते हुए इनकी जो ऑफिस है ग्लोबल ऑफिस, उसमें बैठकर आपकी जो भी सेवाएं हैं उसमें अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई बहनें, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से इस मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में ब्रह्मा बाप माँ की कर्म भूमि में आप सभी भाई बहनों का, इन सब की तरफ से और हमारी तरफ से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यवतमाल और कामठी, ये नागपुर विदर्भ में आता है ना, वहां से आप सभी आए हैं और हमने देखा पुराने इसमें काफी है, लेकिन पहली बार पांडव भवन में चांस मिला भट्टी का या पहले किया है? पहली बार। तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो आप सभी कि पांडव भवन में भट्टी करने का आप सबको मौका मिला। नाम तो कईयों का होगा लेकिन एन मौके पर कुछ एक का कैंसिल हो गया होगा और कुछ एक का ऐड जुड़ गया होगा और एक और नई एक लिस्ट नई बनी होगी। और हम तो यही कहते हैं जो ट्रेन में चढ़ गए और यहाँ पहुँच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली हैं। वैसे तो बाबा के जो भी बच्चे बनते हैं वो सब भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि बाबा ने हमारा जीवन ही बदल दिया। अज्ञान काल में हम क्या थे और बाबा ने हमें एक नया जन्म दिया, ब्राह्मण जन्म दिया, ब्राह्मण जीवन दिया। और ब्राह्मण जन्म की बहुत सुंदर गिफ्ट हमें दी दिव्य बुद्धि और ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसके आधार से बाबा के इस महीन ज्ञान को हम समझ सके, तीनों कालों को जान सके, तीनों लोकों में सैर कर सके और हद के परिवार से निकल एक बेहद परिवार का अनुभव करने लगे। हमारी दृष्टि वृत्ति स्मृति सब बेहद की हो गई। पहले तो हद में थे, छोटा सा परिवार, लेकिन अब जब बाबा के बच्चे बने तो हद से निकल बेहद में आ गए। अभी अगर हमसे कोई पूछे आपके कितने भाई बहन हैं तो हम क्या कहेंगे? केवल लौकिक थोड़ी कहेंगे, क्या कहेंगे? ये सारे ही हमारे अलौकिक भाई बहने हैं, क्योंकि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं और शिव बाबा की अनादि अविनाशी संतान तो है ही। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, वो तो एक बेहद की दृष्टि है, सारा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन ये अलौकिक ब्राह्मण परिवार जो इतना प्यारा परिवार है, जहाँ एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा को ही देखने वाले फॉलो करने वाले बाबा के बच्चे हैं, जिनको इतना ऊंचा लक्ष्य मिला है। तो लक्ष्य तो हम सबका बहुत ऊंचा है, उद्देश्य और फिर लक्ष्य। उद्देश्य तो बहुत भारी है, हर कोई भी बिजनेस कोई आरंभ करता है तो उनका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, देश की सेवा, जो देश हित में हो वो व्यापार करना है। इसीलिए स्वयं का हित नहीं, देश का हित, विश्व का हित, तो वो तो उद्देश्य है ही, सारे विश्व को बदल कर नया विश्व बनाना है। ये कलयुगी दुनिया को बदल कर सतयुगी दुनिया बनाना है, सबको पावन बनाना है, घर ले जाना है, बहुत ऊंचा उद्देश्य है। लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए स्व परिवर्तन बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोगों का नारा ये है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन तब हो सकेगा जब हर एक ये लक्ष्य रखे कि मुझे खुद को बदलना है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, हमारे व्यवहार से, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति से हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन बदलेगा अगर वो तो वो खुद की हिम्मत से बढ़ेगा बदलेगा। तो हम तो केवल उनको प्रेरणा देंगे। तो इसीलिए स्व को पहले बदलना है, ऐसे ना हो कि दूसरों को बदलने जाएं और स्व को बदलने का लक्ष्य ना हो, तो दूसरों को तो बदल ही नहीं पाएंगे पर स्व को परिवर्तन करने से भी वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले स्व परिवर्तन बहुत जरूरी है, फिर परिवार का परिवर्तन, फिर समाज, फिर देश, फिर विश्व। तो इसलिए बाबा हमेशा हमें कहते हैं मुझे बदलना है, मुझे बदलकर दूसरों को बदलना है, बदलना है, बदला नहीं लेना है। तो कैसे हम बदलेंगे अपने आप को? कलयुगी दुनिया में थे तो बहुत सी बुरी आदतें भी थी, न जाने क्या क्या विकारों के वश कर्म भी किए, कितने भी कर्म बनाए होंगे, कितना पाप का खाता अपने सिर पर चढ़ाया होगा। और केवल एक जन्म तो नहीं, 63 जन्मों से हम विकर्म करते आए हैं और पाप का खाता बढ़ाते आए हैं, क्योंकि ये लक्ष्य तो मिला ही नहीं था कि हमें देवता बनना है। भले भारत में हम कहते हैं आदि सनातन धर्म, लेकिन आज भी बाबा ने मुरली में कहा आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। फिर वीर सावरकर की बात आती है, गुलजार दादी उनसे मिलने गए थे, उस समय तो उनका बड़ा था, तो वीर सावरकर नाम तो सुना होगा। तो जब दादी से मिले तो उनको विश्व हिंदू परिषद या उनका ही वो हेड था, तो दादी गुलजार ने उनको कहा कि हिंदू शब्द वास्तव में भारत का तो जो शब्द है वो तो देवता धर्म है, हिंदू तो बाद में आए हैं, तो आप हम सभी देवताएं थे। तो उसने कहा कि देवता भी आपको अपने आप को कहला नहीं सकते, आज की बाबा की मुरली थी, अभी तो हम अपने को देवता नहीं कहला सकते, भले भारत की संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवताओं का बताते हैं निवास था, लेकिन अभी तो कोई अपने आप को देवता नहीं कहला सकता है, इसीलिए हिंदू कहलाते हैं। तो हमारे लिए तो वही प्राचीन धर्म है। लेकिन फिर उनको समझाया गया तो उसने कहा कि हम तो कहाँ देवताएं हैं, लेकिन बाबा ने हमें ये लक्ष्य दिया है कि तुम्हें ही देवता बनना है, तुम ही थे, तुमको ही बनना है, इसलिए नर ऐसी करनी करो जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करो जो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो हमें तो वो केवल देवता नहीं लेकिन लक्ष्मी नारायण, और उसमें भी बाबा कहते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी नहीं, सूर्यवंशी महाराजा महारानी। तो इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य तो क्या है कि हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली है, डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान है, अभी ब्रह्मा हमारा आदि पिता बने हैं और उस आदि पिता की हम डायरेक्ट मुख वंशावली है। जो लौकिक में ब्राह्मण कहलाते हैं वो तो कुख वंशावली है, उनके लिए तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा की मुख वंशावली तो नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, वो तो कुख की संतान है, तो उनके लिए तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा क्या थे, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, 84 जन्म लेकर अभी चलो ब्राह्मण बने हैं लौकिक में, लेकिन हम तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे ना, हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट फादर, डायरेक्ट है ना, ब्रह्मा के बच्चे हम। तो ये अंतिम जन्म भी है और पहला जन्म भी है, तो हम तो डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, इसीलिए हमें वो नशा है कि हम ब्रह्मा की डायरेक्ट मुख वंशावली है। तो ब्रह्मा की डायरेक्ट मुख वंशावली होने के नाते हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमें करना है। ब्रह्मा बाबा ने जो कदम उठाए उन कदमों पर हमें चलना है, तभी तो फॉलो कर सकेंगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं बाबा, सी फादर एंड फॉलो फादर। सी फादर माना शिव बाबा को देखो, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा के गले का हार बनना है, रुद्रमाला में जाना है, घर जाना है, बाबा के नजदीक अपना स्थान होना चाहिए, रुद्रमाला में, परम धाम में भी। और फिर फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि सारा कल्प उनके साथ होंगे हम। तो सारा कल्प उनके साथ कौन होंगे, जो उनके समान बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया जो हमें भी करना है, तब हम ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। तो अभी 2 सप्ताह से हम अव्यक्त मूल्यां सुन रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा के 4 कदम तो हो गए। पिछले रविवार को बाबा ने 2 कदम बताए थे, कौन से याद है? हाँ नहीं, पिछले, उसके पहले, पिछले रविवार। ये तो अभी रविवार के वफादार और फरमान बरदार, लेकिन पिछले रविवार आज्ञाकारी और सर्वांश त्यागी। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के पूरे आज्ञाकारी थे। शिव बाबा ने जो आज्ञा की, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने तुरंत माना। क्या क्या आज्ञाएं दी वो तो हम सुनेंगे। बाबा ने मुरली में भी कहा पिछली संडे को, तो आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी। सर्व अंश, विकारों का एक अंश भी न रहे, उतने त्यागी। काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, ये गीत बनाया था बहनों ने यज्ञ के अंदर। कोई भी विकार का अंश नहीं, क्योंकि अंश अगर होगा तो फिर वो वंश बना देगा, है ना। अंश भी होता ना, उससे वंश बन जाएगा, इसीलिए अंश भी नहीं। अगर अंश भी होगा तो वंश तो बनेगा, लेकिन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो अंश भी खत्म, डेड बॉडी होती है ना, रखते हैं तो उसमें भूत आ सकता है ना, तो इसीलिए उसको जला डालते हैं। तो जला डालेंगे तो खत्म, तो जब तक जलाया नहीं है तब तक वो खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विकारों को जलाना है, होलिका जलानी है और साथ साथ रावण को जलाना है। इसलिए भारत में ये 2 त्योहार होली और दशहरा है, रावण को जलाने के लिए, माया को खत्म करने के लिए। लेकिन वो तब होगा जब पहले हम सब ब्रह्मा बाप समान आज्ञाकारी बनेंगे। बाबा ने हमें कितनी आज्ञाएं दी है, ब्रह्मा बाबा ने उनको पूरा फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा तुम अपने आप को आत्मा देखो, ये सबसे पहली आज्ञा, सबको आत्मा देखो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया अपने आप को आत्मा महसूस करने के लिए। लौकिक परिवार में ही रहते थे, ऐसे नहीं कि लौकिक परिवार छोड़ करके सन्यासी बन गए, नहीं, युगल थी, बच्चे थे, बहुएं, बहू थी, वहाँ बेटियां थी, पोतरे दोतरे सब थे, सारा परिवार था। और जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, सबसे पहली आज्ञा ब्रह्मा बाबा को क्या दी, आप अपने आप को आत्मा समझो और सबको आत्मा देखो। तो बाबा ने कैसे आत्मा समझना, आत्मा देखना, ये कितना अभ्यास किया। बाबा की लौकिक युगल को आत्मा देखना, उनका नाम यशोदा था, तो बाबा की चलो दृष्टि तो बदल गई, लेकिन यशोदा की भी तो दृष्टि बदले ना। वो तो पति रूप में देखती थी, अब पति के बजाय वो पिता बन गया, तो कितना बड़ा परिवर्तन यशोदा को भी लाना पड़ा। तो बाबा दीवारों पर लिखते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। तो घर में यशोदा देखती थी, यशोदा आत्मा है, तो क्या होगा, हाँ? तो आत्मिक दृष्टि यशोदा की भी बनी। फिर बाबा का अपने लौकिक बहू में बहुत मोह था, ब्रजिंद्रा दादी थी ना, महाराष्ट्र जोन की हेड थी, मुंबई साइन में रहती थी। तो उनका नाम पहले उनका नाम भी राधे ही था, तो एक तो ओम राधे थी, तो इनका भी नाम राधे ही था, राधी बहुत नाम होता है सिंधियों में। तो बहुत मोह था बाबा का उनमें, बेटी से भी ज़्यादा बहू में मोह था, और बहुत सुंदर भी थी, एकदम सुंदर थी। तो बाबा तो ज्वेलरी का काम करते थे, तो अपनी बहू को अपने साथ ले जाते थे राजाओं महाराजाओं से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी जो रानियां थी वो तो महलों से बाहर आकर के शहर में घूम के और कोई ज्वेलरी की दुकान में तो नहीं जाएंगी, रानियां कैसे जाएंगे। तो वो उनको राजा लोग बाबा को अपने महल में बुलाते थे कि हमारी रानी के लिए ये हीरों का हार चाहिए। तो बाबा अपनी अपनी बहू को सजा करके ले जाते थे, सुंदर तो थी, और एक एक सेट लेकर जाते थे कि देख वो रानी जो होगी वो कहेगी मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही नेकलेस चाहिए, ऐसा ही ये चाहिए। तो बाबा दूसरा भी लेके जाते थे साथ में, क्योंकि वो अभी और क्या वो अलग अलग तो नहीं ढूंढेंगे, तो वो बहुत पसंद आ जाता था, तो फिर बाबा उनको बेच देते थे। तो बहू जैसे उनकी सेल्स पर्सन थी हाँ, क्योंकि सुंदर भी बहुत थी, तो गहने भी उनके ऊपर बहुत सजते थे, तो इसीलिए बाबा का उनमें बहुत मोह था, और उनका भी बाबा में बहुत मोह था, बहुत। अब उसका भी मोह कैसे हटे, तो यशोदा आत्मा के साथ राधी राधी का आत्मा है, राधी का आत्मा है, वो भी बाबा साथ में दीवारों पर लिखते थे, ताकि बहू भी उनकी दृष्टि भी बदले, और वो भी बाबा को बहू न देखे लेकिन अलौकिक पिता देखे। तो वो तो घूंघट निकालती थी ससुर के आगे, घूंघट निकालते थे। तो बाबा ने उनको कहा, अभी ये अभी तुम सब शिव शक्तियाँ, तो शक्ति रूप बनो। बाबा की युगल भी घूंघट निकालती थी, बहू भी घूंघट निकालती थी, तो बाबा ने सबका घूंघट हटवा दिया, कोई घूंघट की जरूरत नहीं है। तो कैसे उनको जैसे शिव शक्ति बना दिया। तो इसी प्रकार पहला कदम यही उठाया जो बाबा ने कहा, अपने आप को आत्मा समझो। फिर जब बाबा को साक्षात्कार हुआ, अपने भविष्य स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, और विष्णु ने उनको यही वरदान दिया कि अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे हो, तो बाबा को तो नशा चढ़ गया, मैं इन जैसा हूँ। नहीं तो विष्णु की भक्ति करते थे, और अभी विष्णु हमको बनना है, ये बाबा को ज्ञान मिल गया, तो वही नशा चढ़ गया, तो भक्ति एक सेकंड में छूट गई। नहीं तो कितनी भक्ति करते थे, बहुत भक्ति करते थे। बाबा मुरलियों में सुनाते हैं, नर नारायण का मंदिर मुंबई में, मुंबा देवी का मंदिर, हर मंदिर में जाते थे। यहाँ तक कि बाबा कहाँ अमरनाथ की यात्रा पर भी गए थे, कोई तीर्थ स्थान बाबा ने छोड़ा नहीं था। बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत चारों जो भी गुरु किए, न जाने क्या क्या किया होगा भक्ति मार्ग में, सब कुछ किया। लेकिन जैसे शिव बाबा ने अपनी पहचान दी और भविष्य लक्ष्य बताया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ तो माना सब कुछ। तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया ये कौन सी शक्ति काम कर रही है। उन पुत बाबा तो गीता पढ़ते थे, लेकिन शिव बाबा की जैसे प्रवेशता होती थी, किताब तो वहीं का वहीं, शिव बाबा बोलना शुरू कर देते थे। तो बाबा को ये भी नहीं समझ में आता ये कौन बोल रहा है इस मुख से, मेरे मुख से, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी बुद्धि चलेगी ना, मुझे क्या बोलना है आगे, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन सी शक्ति बोलती है। तो उस समय कई ऐसे ट्रांस मैसेंजर्स थे, वो बाबा को बताते थे परमात्मा कैसे आप में प्रवेश होते, क्योंकि किताब वहीं का वहीं छूट जाता था। तो बाबा पहले तो गीता पढ़ते थे और रोज घर में सत्संग करते थे, बिना कुछ मुंह झूठा किए ना धोकर के पहले गीता का पाठ करते थे। सारा परिवार बाबा के साथ बैठता था गीता का पाठ करने, और फिर शिव बाबा की प्रवेशता हो गई तो किताब छूट गया। लेकिन बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, फिर बाबा से साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण के का दर्शन उन्होंने किया बाबा से, तो भी बाबा को कुछ समझ में नहीं आया। तो लोगों ने यही कह दिया जादू है, जादू है, जादू है। तो बाबा कहते मेरी तो कोई जादू नहीं, मेरे पास तो कोई जादू नहीं है, मैं तो आपकी तरह ही भक्त था, मैं भी गीता पढ़ता था, मैंने भी गुरु किए थे, ये क्या हो रहा है। ये बाबा को पहले कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि लोग आने लगे, साक्षात्कार होने लगे, तो बाबा को लगा कि इतने सारे आ रहे हैं तो गोरखपुर में गीता प्रेस है, तो गीता प्रेस से गोरखपुर से 500 गीताएं मंगाई, क्योंकि दूसरे पड़ोसी अड़ोसी सब आने लगे तो सबको एक एक गीता पुस्तक देना है। लेकिन शिव बाबा ने डायरेक्ट ज्ञान देना शुरू किया तो वो भी बंद, सब पूरा हुआ। श्री नारायण की भक्ति करते थे तो वो भी पूरा हुआ, और बस फिर तो साक्षात्कारों की धूम मच गई। फिर बाबा ने कैसे, शिव बाबा ने ऐलान किया कि अभी अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, जो जो बाबा के बने, बाबा के पास समर्पित होते गए, अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। तो सब ने प्रतिज्ञा की, ब्रह्मा बाबा ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाऊंगा, नहीं तो वो तो गृहस्थी था, तो गृहस्थी था। और कैसे एकदम परिवर्तन हो गया, शिव बाबा ने उनको कहा कि अभी अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। तो जो आते थे सत्संग करने उन्होंने भी प्रतिज्ञा की, तो सारे ये हैदराबाद में एक एंटी पार्टी तैयार हो गई कि ये दादा लेखराज क्या कर रहा है, इतने छोटी छोटी बच्चियों को ऐसी प्रतिज्ञा करा ली हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे। तो बाबा कहता था ये मेरी शक्ति नहीं है, उस परमात्मा की शक्ति है जिसने मुझे भी ये कहा तुम भी प्रतिज्ञा करो, तो मैंने भी प्रतिज्ञा इनके साथ की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, तो मैंने भी इनके साथ की जैसे इन्होंने की मैंने भी इनके साथ की, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। और कैसे एकदम बाबा की भी दृष्टि वृत्ति परिवर्तित हो गई, आज्ञा मिली अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। तो जो शिव बाबा की श्रीमत मिली, बाबा नंबर 1 आज्ञाकारी बने। फिर तो कितने विघ्न आए, कितनी समस्याएं आई, लेकिन एक बल, एक भरोसा, शिव बाबा का भरोसा इतना, क्योंकि ये मेरी शक्ति तो है ही नहीं, ये तो भगवान का कार्य है, तो फिर डर किस बात का। इतने कलंक लगे बाबा पर, बात मत पूछो। ये अपने आप को श्री कृष्ण कहता है, इसको अभी कुछ 400 रानियां मिली है और ये कहता है मुझे तो श्री कृष्ण की तरह 16,108 रानियां चाहिए, पटरानियां चाहिए। अभी तो 400 मिली है, अब बताओ नाम बदनाम है, ऐसे ही कितना बड़ा कलंक लगना है ना, किसी को 400 रानियां हैं पर श्री कृष्ण को 16,108 रानियां थी, तो ये भी समस्या हमको भी ऐसे ही चाहिए। तो बाबा कहता था ये मैं तो कुछ, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, ये तो भगवान अपना कार्य कर रहा है। तो शिव बाबा से वो झगड़ा करता था, बाबा बाबा ये क्या, जब साकार में था, पूजा पाठ करता था, इतना बड़ा भक्त था, साथ साथ इतना बड़ा बिजनेसमैन था, तो उनका कितना मान था, कितना मान उनको देते थे, पर जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो क्या हुआ, हा? कलंक लगने लगे। अभी कहा बूढ़ा आदमी और कहा, उनको पर कलंक लगने लगे। तो शिव बाबा को लेना देता था ब्रह्मा बाबा, तो बता मुरलियों में आता है ना, तो शिव बाबा उनको कहते थे भक्ति मार्ग में तुमने भी मेरी ग्लानी बहुत की है। क्या ग्लानी की, हाँ सर्वव्यापी कह दिया, कुत्ते बिले में सब में न जाने क्या क्या कह दिया, तो अभी अब थोड़ी बहुत ग्लानी आपने भी सुन ली तो क्या बड़ी बात है। तो इसीलिए बाबा तो हंसते थे, सिंधी में कहावत है वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। लौकिक में बाबा ब्राह्मण थे, कृपलानी जाति जो सिंधियों की जाति है सबसे ऊंची जाति मानी जाती है, तो ब्राह्मण थे, पक्के वैष्णव थे बाबा, वल्लभाचारी कट्टर, ये श्रीनाथ द्वारा में हर साल आके बड़ा भोग लगवाते थे, श्रीनाथ उनके इष्ट थे ना, विष्णु श्री कृष्ण। तो जो पहले नंबर की आत्मा देखो अंतिम जन्म में वो उनकी भक्त बनी। तो इसीलिए शिव बाबा उनको कहते थे कोई बात नहीं, और कैसे इतनी परीक्षाएं आई, कोर्ट के केस बने, लेकिन बाबा बिल्कुल विचलित नहीं हुए, क्योंकि सत्यता के आगे तो सबकी हार है। तो शिव बाबा का कार्य सत्य कार्य था, सत्ययुग की स्थापना का कार्य था, तो कैसे बाबा ने इन सब को पार किया, तो वो तो आपने हिस्ट्री बहुत सुनी है। लेकिन बाबा कैसे आज्ञाकारी बने, फिर बाबा को शिव बाबा ने कहा कि अपनी सारी प्रॉपर्टी, आपका जो भी लौकिक जो कुछ भी है, चल अचल प्रॉपर्टी, क्योंकि बाबा के पास प्रॉपर्टी भी बहुत थी, ये सारी चल अचल प्रॉपर्टी विल करो माताओं के नाम पर। तो बाबा ने बिना सोचे, क्योंकि भगवान ने ये कहा है, सब कुछ 8 बहनों के नाम पर विल कर दिया, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ। अब परिवार वालों से विरोध हुआ, उनका जो बड़ा बेटा था, वो तो बड़ा था ना बहुत, तो उसने तो बहुत विरोध किया, उसने कहा नहीं मुझे अपना हक चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा कि ये तो मेरी कमाई है ना, दादा की कमाई थोड़ी है, क्योंकि बाबा के पिता तो बहुत गरीब थे, एक स्कूल मास्टर थे, मुरलियों में सुनते होंगे ना, स्कूल मास्टर थे, गांव में स्कूल था उनका, वो मास्टर थे, पर पढ़ाई में तो जरा भी शौक नहीं था। बाबा को लगता था मेरा पिता तो टीचर है, मुझे पास कर देगा मुझे पास कर देगा। चंचल बहुत थे पर होशियार भी उतने ही थे, लेकिन पढ़ाई में शौक नहीं था, पर हाँ भक्ति में बहुत शौक था, शास्त्र पढ़ने में बहुत शौक था, आध्यात्मिक बातों में शौक था, लेकिन सत्यता का ज्ञान तो नहीं था ना, इसलिए शास्त्र खूब पढ़े, गुरु बहुत किए। लेकिन जैसे ही शिव बाबा का कार्य शुरू हुआ तो बाबा ने कहा सब इनको कर दो, तो बहुत विरोध हुआ, बेटे ने बहुत विरोध किया, बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, ये भगवान का मुझे भगवान की आज्ञा मुझे पालन करनी है, ये सब माताओं के नाम पर विल किया। तो विरोध क्या कर सकता है, क्योंकि आखिर तो उनकी प्रॉपर्टी थी। दादा की प्रॉपर्टी होती है तो वो हक लगता है पोते को, पर इसने तो अपनी कमाई की थी सारी, तो कैसे विरोध हुआ, वो अलग हो गया, ठीक है। लेकिन उनकी बहू तो युगल तो बाबा की बन गई, राधिका, उसने जाके दूसरी शादी की। लेकिन बाबा बिल्कुल न्यारे रहे, बेटी तो आ गई, बहू भी आ गई, लेकिन वो बड़ा बेटा नहीं आया, छोटा बेटा नारायण भाई थे ना, नारायण दादा कहते थे हम, तो वो तो छोटा था। और बाबा कई बार मुरलियों में सुनाते हैं कि बाबा के जो पांच बच्चे थे तो उनको लगता था ये काम विकार है, इनको जीतना है और मुझे भक्ति में तल्लीन रहना, बिजनेस में बहुत है। तो उनके गुरु ने उनको कहा कि आपका जो ये सबसे छोटा बेटा अभी पैदा जो हुआ है उसका नाम आप नारायण रखो। तो वो कहानी है ना, कौन सा, किसकी कहानी है, ये जो असुर था राक्षस, उसका बेटा नारायण, क्या, किसका था, नहीं हिरण्यकश्यप नहीं, वही बहुत उसके अजामेल, अजामेल जैसा पापी। तो जो अजामेल था ना, उसके बहुत बच्चे थे, उसकी कहानी है अजामेल की शास्त्रों में, उसके बहुत बच्चे थे, तो बहुत पाप किया था उसने। अब आखिर उसको थोड़ा रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत पाप किया है, भगवान मुझे बहुत सजा देंगे। अब उसकी युगल गर्भवती थी, तो उसने कहा आखिर मैं गुरु करता हूँ। तो गुरु को कहा कि मैं कैसे अपने पापों की पापों को खत्म करूँ। तो गुरु ने उनको कहा अपने बेटे का नाम नारायण रखो, बेटे का नाम नारायण रखो, तो अंत में अगर तुम मरने पर होंगे तो तुम भले बेटे को याद करोगे, मोहवश तो था ही, परंतु नारायण को याद किया तो आपका उद्धार हो जाएगा। और सचमुच उसने उसका नाम नारायण रखा, अजामिल। तो अंत में उसको नारायण 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 कहा तो नारायण ने सुन लिया, उसको लगा कि वो मुझे बुला रहा है, भगवान को बुला रहा है, तो कहा अभी ये मेरा सच्चा भगत है, और उसका उद्धार कर दिया। ये शास्त्रों में कहानी है, तो बाबा पढ़ते थे ये कहानी। तो सबसे छोटा जो बच्चा था उसका नाम नारायण रखा कि मैं भी तो, मैंने भी जीवन में बहुत पाप किए, बिजनेस ऐसे थोड़ी होती है, न जाने कितने पाप किए, कितना झूठ वूठ क्या क्या बोला होगा, इसीलिए बेटे का नाम नारायण रखा। वो कहानी पढ़ कर के, अजामिल की कहानी बाबा कई बार मुरली में सुनाते। परंतु कैसे जीवन में परिवर्तन आए, इतने आज्ञाकारी बने, सब कुछ स्वाहा कर दिया, फिर उसके बाद धन को तो हाथ में भी नहीं लिया। और फिर बाबा ने कहा कि माताओं को आगे रखना है, तो माता गुरु तो जगत अम्बा सरस्वती वो अलौकिक माँ बनी, तो मानो उनके लिए वो, बाबा भी उनको मम्मा कहते थे, हालांकि वो तो इतनी छोटी थी, 16-17 साल की थी, और बाबा तो 60 वर्ष के थे, लेकिन उनको मम्मा कहा। तो बाबा ने मम्मा कहा तो सारे परिवार ने, ईश्वरी परिवार ने मम्मा का कहा, तो इसीलिए उस समय तो क्रांति हो गई थी। एक तो साक्षात्कारों की क्रांति, दूसरा नारी शक्ति इतनी आगे आई, वो भी एक क्रांति थी, माताओं बहनों को आगे किया बाबा ने, नहीं तो उस समय नारी के लिए तो बिल्कुल ही तिरस्कार था, तिरस्कार था, नारी को जैसे कोई पूछता ही नहीं था, स्त्री को। इसलिए वो जो आता है ना, यह वो शूद्र पशु, वो क्या गवार कौन है, किसके लिए, नारी, ये तारण के अधिकारी। तो उस समय सचमुच स्त्री के प्रति एक पुरुषों में नफरत थी, बिल्कुल नफरत थी, ऐसे नहीं कि नहीं थी। और बाबा ने कैसे उनको शक्ति दी, और उनके आगे बाबा झुकते थे, बाबा कहते थे दिखाते द्रौपदी के पांव ये दबाए, लेकिन बाबा को एक चीज पसंद नहीं आती थी, वो लक्ष्मी जी विष्णु के पांव दबा रही है, क्योंकि नारी के प्रति बाबा को बहुत सम्मान था। तो लक्ष्मी क्यों विष्णु के पांव दबाए, दिखाते क्षीर सागर में विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है, तो वो देख रही है कि विष्णु जी शेष नाग है पर लेटे हुए हैं और ऐसे हिल रहा है शेष नाग, और सागर के बीच में लहरें हैं लेकिन विष्णु जी लेटे हुए हैं बड़े आनंद मुद्रा में। तो दिखाते कि लक्ष्मी को लगा कि मैं पांव दबा रही हूँ इसलिए उसका आनंद ले रहे हैं। तो लक्ष्मी ने पूछा आप इतने आनंदित कैसे हैं, तो कहा मैं तो गीता ज्ञान का रमण कर रहा हूँ। गीता ज्ञान, तो गीता ज्ञान का रमण कर रहे हैं शेषनाग की सैया पर लेटे हुए सागर के बीच में उथले आ रही है पर वो आनंद की स्थिति में। तो बाबा को ये चित्र तो पसंद आया विष्णु का, लेकिन लक्ष्मी जी पांव दबा रही है ये बाबा को पसंद नहीं था। तो बाबा ने क्या किया, अपने अपने दुकान पर विष्णु का चित्र बनवाया आर्टिस्ट से, और उसमें कहा लक्ष्मी को हटा दो, लक्ष्मी नहीं चाहिए, केवल विष्णु का चाहिए। ऐसे बाबा हमको विष्णु बना रहे हैं, क्योंकि नशा तो चढ़ गया था ना, तो लक्ष्मी हटा दी कि वो पांव क्यों दबाए, वो दासी है क्या, दासी जो होती है चलो वो पांव दबाएगी, ये तो महारानी है वो क्यों पांव दबाएगी। तो इसीलिए बाबा ने हटवा दिया। तो इसलिए नारी के प्रति इतना सम्मान, तो जैसे बाबा की दृष्टि पूरी बदल गई। यशोदा बाबा के जब भी आते थे दुकान से तो बाबा के पांव धोती थी, इतना सम्मान करती थी। बाबा ने सब कुछ बंद करा दिया, सब कुछ तुम शक्ति हो, शिव शक्ति हो। तो ये आज्ञाकारी की जो स्थिति है ना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। और अगर हम सब आज्ञाकारी इस प्रकार बाबा के बनते हैं, जो श्रीमत मधु मुरली में आती है वो हमारे लिए, चाहे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कितनी श्रीमत बाबा हमें देते हैं, तो हम अपने आप से पूछें हम कितनी उसकी पालना करते हैं उस आज्ञा की। हर कर्म के लिए, वचन के लिए, सोच के लिए, सब के लिए बाबा की श्रीमत है। कभी बाबा कहते हैं बाबा राय देते हैं, कभी बाबा कहते हैं बाबा आज्ञा करते हैं, कभी बाबा कहते हैं बाबा फरमान करते हैं। तो राय कहो, आज्ञा कहो, फरमान कहो, ये सब बाबा की श्रीमत है। तो जब इस श्रीमत को हम समझते हैं ना, तो बुद्धि में आता है जो बाबा कहते हमको वो करना है। इसको कहते हैं फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। और ब्रह्मा बाबा कैसे कितना जल्दी कर्मातीत बन गए, कैसे फरिश्ता बन गए, क्योंकि आज्ञाकारी थे। फिर दूसरा सर्वंश त्यागी, जो बाबा का ने दूसरा कदम बताया, सर्वंश त्यागी। कई पूछते थे बाबा को कभी गुस्सा आता था, अरे बाबा को गुस्सा कैसे आएगा, बाबा कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी भी नहीं, भूल से भी नहीं। बाबा कहते अच्छा ठीक, हमारी दादियां देखो कितनी मीठी, कितनी प्यारी, क्या नहीं दादियों के आगे भी बातें आई होगी, बाबा मम्मा के आगे बातें आई होगी, लेकिन गुस्सा कभी नहीं किया। मैंने तो एक दादी प्रकाशमणि के सामने एक उदाहरण मैंने खुद देखा, एक व्यक्ति आया दादी को इतना कुछ बोलने लगा, इतना बोलने लगा, दादी चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोला दादी जी ने, और बोलता गया पता नहीं क्या, अब दादी आप ये ध्यान नहीं देते, दादी ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, क्या नहीं क्या बातें कही, और दादी एकदम चुप। अब 10-15 मिनट बहुत जोर जोर से चिल्लाता रहा, और फिर जब पूरा हुआ आखिर कहाँ तक बोलेगा, और दादी सुनती रही। दादी ने इनको कहा बैठी बैठी बैठिए बैठिए, और जब पूरा किया तो दादी ने वो बहन को कहा इसके लिए पानी का ग्लास ले आओ पानी का ग्लास ले आओ, पानी ले आओ। तो उसके बाद फिर पानी उसने पिया, थोड़ा ठंडा हुआ। तो दादी जी ने कहा ठीक है, आपकी जो बातें हैं वो हमारे ध्यान पर है और हम देखेंगे। हाँ बाकी आप बहुत अच्छे, फिर उनकी दादी जी ने इतनी महिमा की बात मत पूछो। और वो धीरे 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 ठंडा हो गया, देखो। लेकिन दादी जी ने गुस्सा नहीं किया, नहीं तो क्या होता है? हाँ क्या होता है? हाँ तुम शेर तो मैं सवा शेर, तुम नेला तो मैं देला। हाँ लेकिन ये जरूर था, तो इसीलिए सर्वंश त्यागी बने। फिर कल भी बाबा की जो परसों बाबा की मुरली चली उसमें भी दो थे। अब ये आपको मनन करना है, चिंतन करना है कैसे फॉलो फादर करें। शांति।